समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में जानेंगे देश दुनिया के समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और याद करेंगे उन व्यक्तित्वों को भी जिनकी है आज पुण्यतिथि या फिर जयंती। और कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक खास सेगमेंट डेटलाइन, और आज का डेटलाइन वाकई रोचक है क्योंकि वो जुड़ा हुआ है हम सबकी और हमारी दुनिया से, यानी आज है नेशनल वॉइस डे। इसके बारे में बहुत से तथ्य, बहुत सारे फैक्ट्स आपके बारे में हम साझा करेंगे आज के इस अंक में। मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड टुडे विथ मी इज माय कोहोस्ट जागृति, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Star campaigners of various political parties hold back-to-back rallies for the first and second phase of Lok Sabha polls.
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने बिहार में दो रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा असम के जोरहाट में रोड शो करेंगी।
BJP, BSP and AAP release another list of candidates for Lok Sabha polls.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों के आर्थिक उत्थान में तेजी लाने में सहायता के लिए आंकड़ों के विश्लेषण और साक्ष्य आधारित विकास कार्यक्रमों को लागू करने पर जोर दिया।
United Nations nuclear watchdog IAEA expresses concern over possibility of Israeli attack on Iranian nuclear facilities.
और शतरंज में भारत के डी गुकेश कनाडा के टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में रूस के इयान नेपोपनियाची के साथ ड्रॉ खेलकर शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं।
And now Jagriti, it's time for a segment Dateline India, which we take a look at the developments taking place at the national or the global level, and today we will talk about World Voice Day. And Jagriti, whether it's honey-drenched voices or deep bass, low-pitched ones, some voices are so fascinating that you want to hear them again and again. Voice colors are every interaction and conjures up the image of who we are talking to. And someone rightly said, the world is our stage and our voice are our instruments of change. And would you like to tell us, Jagriti, about some Indian personalities who have great voices?
बिल्कुल, आवाज की दुनिया में लता मंगेशकर को कौन भूल सकता है। और अगर हम रेडियो पर हम बात कर रहे हैं इस समय, और रेडियो जो है वो अपने आप में ही, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग मीडियम है, लोगों के लिए पहचाना जाता है आवाज के लिए, क्योंकि जो छोटे छोटे इलाकों में या ऐसी जगहों पर लोग हैं जहां और साधन नहीं है इन्फॉर्मेशन के या एंटरटेनमेंट के, वहां पर रेडियो पहुंचता है। और आप देखिए, हम अभी तो क्योंकि एक बड़े शहर में है, मेट्रो शहरों में जब रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम है जहां से हम चीजें जो है प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन छोटी जगहों पर जाते हैं और लोग आपको बताते हैं ना कि अभी हमने रेडियो पर उनको सुना, उनकी आवाज में बहुत दम है, उनका समाचार या प्रोग्राम जब हम सुनते हैं तो लगता है कि वो हमारे नजदीक में है, वो कितना अपील कर रहा है। तो तमाम जब इस तरह के जो वॉइस आर्टिस्ट हैं, चाहे वो रेडियो के हों या फिर वो म्यूजिक इंडस्ट्री के हों, जो हमारे सिंगर्स हैं जैसे लता मंगेशकर हैं, आर डी बर्मन साहब हैं, इतने बड़े बड़े महान कलाकार हैं यहां पर आवाज की दुनिया के, उन्हें कौन भूल सकता है और उनकी आवाज को कौन भूल सकता है।
एब्सोल्युटली जागृति, एंड टू नेम सम ऑफ द मोस्ट फेमस वॉइसेज इन द वर्ल्ड, वेल, जेम्स अर्ल जॉन्स, Morgan Freeman and Billy West are the most famous baritones. And you have talked about the radio one, and like, now let's also talk about some powerful and versatile voices in Bollywood. Well, Raja Murad, Goga Kapoor, Amrish Puri, Om Puri, Amitabh Bachchan, Kabir Bedi, Suresh Oberoi, Nana Patekar, Pran and Mukesh Khanna are some well-known voices of Bollywood. And would you like to add to the list?
बहुत सारी लिस्ट है इसके लिए, तो आप बिल्कुल पुराने जमाने से जाएंगे कलाकारों के नामों को लेकर आज तक चले आएंगे, तो लिस्ट बहुत लंबी है।
द ट्रीटमेंट फॉर वॉइस डिसऑर्डर्स इज ऑफन इग्नोर्ड विच कैन लीड टू फर्दर कॉम्प्लिकेशंस। सो वर्ल्ड वॉइस डे इज अ डे टू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वॉइस एंड द नीड फॉर प्रिवेंटेटिव केयर। इट इज ऑल्सो रिमाइंडर दैट वी शुड ऑल टेक स्टेप्स टू मेंटेन अ हेल्दी वॉइस फॉर अ बेटर quality of life, and every year on April 16th, people around the globe come together to celebrate World Voice Day, an occasion dedicated to raising awareness about the importance of the human voice and vocal health. As the day falls annually on April 16th, this date serves as a reminder to cherish and care for our vocal cords, ensuring that they remain healthy and capable of conveying our thoughts, emotions and desires effectively.
और अभिषेक, हम दिन में कम से कम 10 से 20 लोगों से मिलते हैं, लेकिन कई बार जो आवाज हमें अपील करती है या फिर हमें सुकून देती है, वो आवाजें हमें ज्यादातर याद रह जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आप कहीं पर जा रहे हैं और कोई आपसे बात कर रहा है, तो उसमें से दो चार लोगों से आपने बात की, तो हमें ज्यादातर कौन सी जो ऐसी आवाजें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो याद रह जाते हैं?
वेल, आई लाइक टू से जागृति दैट वॉइसेस आर अ कॉलिंग कार्ड्स। How we speak is how we present ourselves to the world. People judge us first of all by listening to us, how we sound, isn't it? It's a calling card. So, the concept of World Voice Day was initiated by a group of otolaryngologists and voice scientists who recognized the need to educate the public about the significance of vocal health. And the first World Voice Day was celebrated in 1999 with events held in over 50 countries. Since then, the observance has grown significantly with organizations, healthcare professionals, educators, and performers worldwide joining in to promote vocal wellness and advocacy.
बिल्कुल, और आज के समय में अगर देखा जाए तो जो वोकल हेल्थ है उस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से या फिर आपके डाइट की वजह से या बहुत से लोग जैसे स्मोक और ड्रिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से जो वोकल हेल्थ है उस पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में जरूरत है आपको अवेयर रहने की और इसके लिए प्रयास करते रहने की, क्योंकि आवाज है तो आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, और जब इसमें कोई दिक्कत आ जाती है उसके बाद आप कल्पना करिए कि हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे।
यस, एंड हियर आई लाइक टू शेयर अ फ्यू टिप्स विद द लिसनर्स अबाउट हाउ टू यूज योर वॉइस एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। वेल, फर्स्टली ट्राई नॉट टू ओवर यूज योर वॉइस, रेस्ट योर वॉइस व्हेन सिक, अवॉइड यूजिंग एक्सट्रीम्स ऑफ योर वोकल रेंज सच एज स्क्रीमिंग एंड विस्परिंग, प्रैक्टिस गुड ब्रीदिंग टेक्निक्स, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर and get enough rest. And the significance of the World Voice Day extends beyond the mere act of speaking or singing. Our voices serve as powerful instruments for communication, self-expression and identity. Whether delivering speeches, performing on stage, engaging in conversations, or expressing emotions through song, our voices play a central role in our personal and professional lives. Furthermore, vocal health is a vital aspect of overall well-being, and maintaining a healthy voice involves practicing proper vocal hygiene, staying hydrated, avoiding harmful habits like smoking, like you said, and seeking professional care when necessary. And by raising awareness about vocal health and encouraging preventive measures, World Voice Day aims to reduce the incidence of voice disorders and empower individuals to care for their voices proactively.
बिल्कुल, और याद रखना चाहिए कि आवाज के लिए हमें और भी छोटे छोटे टिप्स हैं, उनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो आपका गला और आपकी जो आवाज है वो बेहतर बनी रहेगी, जिसके लिए आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, और ऐसे माउथ वॉश या जो फिर गरारे करने की जो दवाएं हैं या फिर कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं उनसे बचें जिनमें कि बहुत ज्यादा अल्कोहल हो या फिर जलन पैदा होती हो, जिसकी वजह से आपका जो है गला भी जल सकता है, और आप स्मोकिंग ना करें, और इसके अलावा जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में जब आप निकलें तो अपने गले को इस तरीके से कवर करके निकलें।
Yes, and also let's talk about how we can celebrate the World Voice Day. So here are some ideas on how to celebrate the World Voice Day. Attend local events, workshops or concerts, focus on vocal health and artistry. Share voice-related content on social media to raise awareness. Participate in vocal warm-ups or exercises to promote voice care. And engage in discussions about the significance of effective communication.
और आवाज के लिए हेल्थ ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, और अगर आपको गले से रिलेटेड कोई भी दिक्कत लगती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, क्योंकि आवाज ही आपकी पहचान है।
On World Voice Day, I'd like to leave you with a quote by Adele, who said, "The voice is a muscle and it deserves as much attention and care as any other part of the body. So listeners, preserve and protect your voices from harm and use the remarkable gift of voice."
Or अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि क्या कुछ खास है उनके पास।
इन रिकग्निशन ऑफ द रिमार्केबल एडवांसमेंट्स इन हॉर्टिकल्चर, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी MHU करनाल हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बेस्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी अवार्ड नेशन वाइड, एंड दिस एक्लेड वॉज बिस्टोर्ड बाय कृषि व्यापार शिखर सम्मेलन एंड पुरस्कार एट एन इवेंट इन हैदराबाद, अंडरस्कोरिंग MHU's एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड। Let's hear more.
In recognition of the remarkable advancements in horticulture, Maharana Pratap Horticulture University, Karnal, has been honored with the prestigious Best Horticulture University Award nationwide by Krishi Vyapar Shikhar Sammelan and Puraskar at an event in Hyderabad. MHU is working on important research in the field of horticulture on fruits, vegetables, flowers and medicinal plants. The university is committed to fulfilling the needs of the state. In the past years, the university has conducted research to develop many new technologies whose positive outcomes have now started coming. The biggest achievement in the recent times has been in the research on biological microorganisms. MHU has identified many good microbial-related bio-inputs. These can be successfully used in the field of horticulture to produce safe and quality crop. For example, their use will reduce the need for chemical fertilizers by 20-25% in the field. Due to these achievements, the Krishi Vyapar Shikhar Sammelan and Puraskar Sanstha have honored MHU by awarding it the Best Horticulture University Award. MHU is continuously striving to reach the advanced technologies used in the field of horticulture to the farmers, and the main objective of MHU is to boost quality production. As a result, farmers' incomes rise at less cost and they become economically affluent. There is a growing trend among farmers towards horticulture farming, which will benefit the coming generation. MHU suggests farmers to contact the scientists of MHU for horticulture-related problems for resolution. Akanksha Saxena for Parikrama from Chandigarh.
In view of the upcoming Lok Sabha elections, we present you a capsule based on state profile giving details of number of faces, date of polling, number of seats and other relevant facts by a correspondent. Now, where do we go to first, Jagriti?
बिल्कुल, सबसे पहले हम चलेंगे पश्चिम बंगाल और बात करेंगे जलपाईगुड़ी संसदीय क्षेत्र की।
Jalpaiguri in West Bengal will go under poll on 19th April under the first phase of Lok Sabha election. There are more than 18 lakh voters in this constituency, in which more than 8 lakh are female voters. There are 13 third gender voters also. This is a reserved seat for scheduled caste and consists of 7 assembly constituencies. There are more than 1900 polling stations in Jalpaiguri parliamentary constituency. Election Commission has provided facility for home voting for Divyang of 40 plus disability and old persons aged 85 plus. Home voting was conducted in the presence of central and state forces. Commission is doing everything for a free and fair vote. Awareness campaigns had been organized by the Commission at various parts of this constituency to persuade voters to come more in numbers on the voting day. Various political parties are doing public meetings and road shows to influence the voters of this Lok Sabha constituency. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
और पश्चिम बंगाल से अब हम आएंगे राजस्थान में, जहां पर पाकिस्तान की सीमा से सटा और थार रेगिस्तान में फैला बाड़मेर संसदीय क्षेत्र क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है और इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बाड़मेर में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। इस संसदीय क्षेत्र के चुनावी परिदृश्य पर और अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी से।
This Lok Sabha constituency consists of a total of 8 assembly seats of Bardmer, Jaisalmer and Balotra districts. A total of 11 candidates are in the fray from this parliamentary seat, which has more than 22,06,000 voters. Number of young voters in the age group of 18 to 40 years are highest in this constituency. BJP has again reposed faith in Union Minister and sitting MP Kailash Chaudhary at this seat, whereas Congress has fielded Umedaram Benival, who recently joined Congress, leaving Rashtriya Loktantrik Party. The contest has become interesting with MLA from Siv Assembly seat Ravindra Singh Bhati contesting as an independent candidate. Large public meetings have been held here in support of the three main candidates. It has become hot seat and now everyone is looking keen interested about the ups and downs on this seat. Jitendra Dwivedi, Akashwani News, Jaipur.
Now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember social reformer and nationalist Kandukuri Veerasalingam, who was born on 16th of April 1848 in Rajahmundry, Andhra Pradesh. He is considered as the father of Telugu Renaissance movement and was one of the early social reformers from southern India who encouraged women education and remarriage of widows.
వివేకవర్ధని వెలుగుత వాపిన భాస్కరుడ నవ సమాజ నిర్మాత నిలచిన శాశ్వతుడా నిలచిన శాశ్వతుడా వందనాలు వందనాలు కందుకోరి ఈ తెలుగు నేల పులకరించు చరితనీది.
వీరసలింగం వాజ్ అ స్కాలర్ ఆఫ్ త్రీ లాంగ్వేజెస్, తెలుగు, సంస్కృత్ అండ్ ఇంగ్లీష్. He wrote Rajasekhar Charitram, considered to be the first novel in the Telugu language.
Veerasalingam wrote extensively for the emancipation of women. His works were predominantly satires on the then existing immorality, superstitions, double standards and degradation in society.
Veerasalingam used the ancient scriptures to portray the importance given to women during earlier times. He declared that India can only progress when its women will progress. He set up schools for the education of girls and women. He also performed the first widow remarriage in Andhra Pradesh on December the 11th, 1881.
Despite society's heavy scorn, he helped marry off about 40 widows in his lifetime. He published various magazines and journals wherein he championed the cause of women and education. In 1887, he started a Brahmo Mandir at Rajahmundry.
Veerasalingam was one of the first few to attend the maiden session of the Indian National Congress in 1885. He passed away on the 27th of May 1919. Till his death, Kandukuri Veerasalingam continued to work for the betterment of society. We salute the great Indian.
We also remember nationalist painter Nandlal Bose, who died on 16th of April 1966. Bose is considered to be one of the pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. During the Salt Satyagraha in 1930, Bose created a black-on-white linocut print of Gandhi walking with a staff. The print emerged as the iconic image for the non-violence movement. He was also tasked with making the illustrations in the Constitution of India, in which he gave a pictorial account of Indian civilization through millennia.
A pupil of Abanindranath Tagore, Nandalal Bose was born on the 3rd of December 1882 in Munger district of Bihar. His classic works include paintings of scenes from Indian mythologies, women, and the village life.
Bose was famously asked by Jawaharlal Nehru to sketch the emblems for the Government of India's awards, including the Bharat Ratna and the Padma Shri. Along with his disciple Ram Manohar, Nandalal Bose took up the historic task of decorating the original manuscript of the Constitution of India.
Till his death, Nandalal Bose continued to work towards empowering the nation through his art. We salute the great Indian.
We also remember Martyr Rama Sur Singh, who took part in the First War of Indian Independence in 1857. Initially, as a boy in the English East India Company Army, he fought against the British at different places in the Bombay Presidency.
He was caught by the company troops in the course of their offensive and died in detention at the Andaman Islands on the 16th of April 1858.
In business news today, benchmark equity indices ended lower for the third straight session today, tracking weakness in global markets amid a worsening situation in West Asia. Investor sentiment was further dampened by the surge in U.S. Treasury bond yields. BSE Sensex declined 456 points or 0.62% to close at 72,944. Nifty 50 slipped 125 points or 0.56% to settle at 22,148. In the forex market, the rupee ended at 83 rupees and 54 paise against the US dollar. And moving on to some sports news. Well, Jagriti, while many dream of hanging up their boots at 50, a bureaucrat in Delhi has shown that age is nothing but a number and you can stay on top with sheer grit and grind. Ekta Vishnoi, Deputy Director General at Sports Authority of India, SAI, and the brains behind the famous Fit India movement, who was already making waves in fitness, is now creating records in powerlifting. She has bagged medals at the recent National Senior Powerlifting Championship in Hyderabad. At the ripe age of 50, Vishnoi went toe-to-toe with girls half her age, clinching a silver in deadlift with a whopping 165-kilogram lift and a bronze overall. Not only did she dominate, but she also shattered all records in the Master 2 category. And while talking to Akashvani, Ekta Vishnoi said it was a hobby of keeping herself fit and healthy that got her to this stage.
So human body has no limits. You can do whatever you want to with this body. So it's up to you. So everybody has a hobby, and my hobby is to keep myself fit and healthy, because that not only helps me in my work, managing my home, but also keep motivating me in challenging myself and pushing myself. Earlier I was playing in Masters 1, which is up to 49 age. Then I decided, then I challenged myself and I decided that I'll be playing. Now let us challenge yourself and let us play in the senior open category where you have younger girls of 20 to 30 years of age. So I challenged myself and I played this senior national powerlifting championship this year.
Before this, Vishnoi clinched gold in the National Masters Powerlifting Championship and struck gold and silver in the Commonwealth Powerlifting Championship and Asian Powerlifting Championship 2022. Ekta says everybody should take out some time to keep their mind and body healthy, as this will pave way for success in their lives.
और अब खेल की कुछ अन्य खबरों पर नजर डाल लेते हैं. आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा. कल बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 21 रन से हरा दिया. और शतरंज में भारत के डी गुकेश कनाडा के टोरंटो में फिडे कैंडिडेट्स के 10वें दौर में इयान नेपोमन्याची के साथ मैच ड्रॉ करके शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं. इस बीच विदित गुजराती और आर प्रज्ञानंदा ने भी ड्रॉ खेला है. सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव पहले स्थान पर रहे हैं, वहीं अनिमेश प्रधान दूसरे और दोनुरू अनन्या रेड्डी तीसरे स्थान पर हैं। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 25 शीर्ष उम्मीदवारों में 10 महिलाएं और 15 पुरुष हैं।
Yes, and now we have reached that section of a program in which we remember all those greats who are associated with today's date, and we start with.
जी प्रसिद्ध संगीतकार केजी जयन का आज सुबह कोची के त्रिपुनी थुरा में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। अपने भक्ति गीतों के लिए जाने जाने वाले जयन ने 1000 से अधिक गीतों की रचना की और कुछ मलयालम और तमिल फिल्मों के संगीत निर्देशक भी रहे। वे अपने जुड़वा भाई केजी विजयन के साथ दक्षिण भारतीय संगीत की दुनिया में जया विजया भाइयों के नाम से जाने जाते थे। पद्मश्री से सम्मानित जयन को केरल संगीत अकादमी और हरिवरासनम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
Yes, and Nandanlal Bose passed away on this day in 1966. He was one of the pioneers of modern Indian art and a key figure of contextual modernism. A student of Rabindranath Tagore, Bose was renowned for his unique Indian style of painting. In 1921, he assumed the role of principal at Kala Bhavan Shantiniketan, a position that allowed him to shape and guide the next generation of artists. His artistic vision was influenced by the Tagore family and the murals of Ajanta. His notable works include paintings depicting scenes from Indian mythologies, women and village life. And today many critics consider his paintings among India's most important modern paintings. And in 1976, the Archaeological Survey of India, Department of Culture, Government of India declared his works among the 9 artists whose work not been antiquities were to be subsequently considered to be art treasures. Having regard to the artistic and aesthetic value, he was given the work of illustrating the Constitution of India.
जी नंदलाल बोस ने संविधान की मूल प्रति का डिजाइन बनाया था और उन्होंने चित्रों और कला के अध्यापन के अलावा 3 किताबें भी लिखी, रूपावली, शिल्पकला और शिल्प चर्चा। उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण जी हवलाजी आरा की आज जयंती है। जीवन की अनेक विषमताओं से जूझते हुए कृष्ण जी हवलाजी आरा ने मुंबई के कलाकारों के बीच अपनी पहचान बनाई। 1950 और 1960 के दशक में उन्होंने अभूतपूर्व ख्याति अर्जित की।
Yes, Akon was born on this day in 1973. He's a Singhalese American singer, rapper, songwriter, record producer, businessman and philanthropist. Let's listen into his hit track Ghetto, and it's from his 2003 album Trouble.
बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध लेखक अद्वैत मल्ल बर्मन की आज पुण्यतिथि है। इनका बांग्ला उपन्यास तितास एकटी नदीर नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ और इनकी आरंभिक रचनाएं नव शक्ति में छपी, उसके बाद आजाद और मुहम्मदी नामक पत्रिकाओं से जुड़ गए।
Sir Charles Spencer Chaplin was born on this day in 1889. He was an English comic actor, filmmaker and composer who rose to fame in the silent film era. Through his screen persona, The Tramp, he became a worldwide icon and is considered one of the film industry's most influential figures. His career spanned more than 75 years from childhood in the Victorian era until a year before his death in 1977, and it encompassed both adulation and controversy.
तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध विद्वान कंदुकुरी वीरेशलिंगम की भी आज जयंती है। इन्हें आधुनिक तेलुगु साहित्य में गद्य ब्रह्म के नाम से ख्याति मिली। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा आश्रमों की स्थापना की, बालिकाओं के लिए पाठशालाओं की स्थापना कराई। आधुनिक तेलुगु गद्य साहित्य के प्रवर्तक वीरेशलिंगम ने प्रथम उपन्यासकार, प्रथम नाटककार और आधुनिक पत्रकारिता के प्रवर्तक के रूप में ख्याति अर्जित की।
लारा दत्ता भूपति वॉज बॉर्न ऑन दिस डे 1978. शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड विनर ऑफ द मिस यूनिवर्स 2000 पेजेंट, हु प्राइमरली वर्क्स इन हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स, एंड शी रिसीव्ड अ फिल्म फेयर अवार्ड एंड वॉज अ लीडिंग लेडी इन द 2000s.
जब से तुझको देखा कुछ भी ना सोचा ना समझा दिल दे दिया।
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, जागृति और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की दीजिए इजाजत।
नमस्कार।